एकतत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसी रचना की गहराई में उतर रहे हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये पूरी मानवता की आध्यात्मिक खोज का एक महाकाव्य है, अश्वघोष का बुद्धचरित।
बिल्कुल, और ये संस्कृत साहित्य का एक बहुत ही अनमोल रत्न है। करीब दूसरी सदी ईस्वी में रचा गया। ये हमें सिद्धार्थ गौतम के जीवन में ले जाता है, वही राजकुमार जो बाद में बुद्ध बने, मतलब जागृत।
हाँ, जागृत।
अश्वघोष इसे सिर्फ घटनाओं की लिस्ट की तरह नहीं बताते, बल्कि इसे एक भावनात्मक और दार्शनिक यात्रा का रूप देते हैं, बहुत खूबसूरती से।
और शायद यही बात इसे आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है ना। सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास दुनिया की हर खुशी थी, हर सुविधा थी, मतलब ऐश्वर्य, शक्ति, परिवार, सब कुछ, आखिर उसने वो सब छोड़ क्यों दिया? ये सवाल आज भी कहीं ना कहीं हमारे मन में उठता है।
सही बात है।
अश्वघोष की ये कृति सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि ज्ञान और करुणा के रास्ते का एक अद्भुत काव्यात्मक चित्रण है।
हाँ बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे विलासिता में पला एक राजकुमार मानवता के दुखों को देखकर इतना हिल गया कि उसने उन दुखों से मुक्ति का रास्ता खोजने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया।
ये सिर्फ बौद्ध धर्म की शुरुआत की कहानी भर नहीं है,
नहीं,
बल्कि स्वयं सत्य को, मतलब वास्तविकता को समझने की एक बहुत गहरी, कभी कभी दर्दनाक, लेकिन आखिर में मुक्ति देने वाली प्रक्रिया की कहानी है।
तो चलिए इस यात्रा को शुरू से देखते हैं, सिद्धार्थ के शुरुआती सालों से।
कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से, और वो भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, है ना?
जी हाँ, रानी माया का वो सपना, फिर लुम्बिनी वन में जन्म होना और जन्म के तुरंत बाद वो 7 कदम चलना, ये सब बड़े असाधारण संकेत थे।
और फिर वो ऋषि असित की भविष्यवाणी।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि ये बालक या तो एक महान चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बुद्ध। इसी भविष्यवाणी ने पिता राजा शुद्धोदन को चिंता में डाल दिया।
और माँ का निधन भी जल्दी हो गया था।
जी, तो मौसी महाप्रजापति ने ही उनका पालन पोषण किया।
पिता ने तो ठान लिया था कि बेटे को दुनिया के दुखों से बिल्कुल दूर रखेंगे, उसे सिर्फ सांसारिक सुखों में ही उलझाए रखना है।
बिल्कुल, ताकि वो भविष्यवाणी की दूसरी दिशा में ना जाए। दुख, बुढ़ापा, बीमारी, इन सब से पूरी तरह अनजान रखा गया।
उनके लिए तो हर मौसम के हिसाब से अलग महल थे, हर तरह का ऐशो आराम था।
हाँ, लेकिन अश्वघोष ये भी दिखाते हैं कि सिद्धार्थ में बचपन से ही एक गहरी सोच थी, चिंतनशीलता थी।
अच्छा,
जैसे वो एक बार बचपन में जामुन के पेड़ के नीचे अपने आप ही ध्यान में बैठ गए थे। तो भारी सुरक्षा कितनी भी हो, अंदर एक खोज तो शायद चल ही रही थी।
हाँ, और शायद इसीलिए जब ये सुरक्षा टूटी तो उसका असर और भी ज्यादा गहरा हुआ।
बिल्कुल।
तो राजकुमार बड़े भोड़े, उन्होंने हर राजसी कला सीखी, युद्ध नीति, शासन, शास्त्र,
हाँ,
सब कुछ,
और सब में वो बहुत निपुण भी थे। पर अश्वघोष बताते हैं कि उनमें कहीं ना कहीं एक अनासक्ति का भाव हमेशा रहा। पिता ने सोचा कि विवाह से शायद वो संसार में बंध जाएं, तो खूबसूरत यशोधरा से विवाह करवाया गया।
और फिर पुत्र राहुल का जन्म हुआ।
हाँ,
राहुल जिसका मतलब ही बंधन है।
हाँ, कुछ समय तक तो लगा कि योजना सफल हो रही है, राजकुमार पारिवारिक जीवन में रम गए हैं,
पर वो अंदर की बेचैनी गई नहीं।
नहीं, वो कम नहीं हुई। और फिर वो क्षण आया जब उन्होंने महल के बाहर की दुनिया देखी, वो प्रसिद्ध 4 दृश्य।
हाँ, ये तो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था शायद।
बिल्कुल, पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक मृत शरीर को।
सोचकर भी सिहरन होती है, जिस व्यक्ति ने कभी दुख देखा ही न हो, उसके लिए कितना बड़ा झटका रहा होगा।
यकीनन, उनका जो सुरक्षित संसार था वो पूरी तरह हिल गया। उन्हें पहली बार बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की सच्चाई का एहसास हुआ कि ये सबको झेलना है, कोई नहीं बच सकता।
वो खुद भी नहीं, उनका परिवार भी नहीं।
हाँ, महल के सारे सुख अचानक खोखले लगने लगे।
और फिर वो 4था दृश्य, एक शांत तपस्वी का।
जी, एक शांत निर्विकार तपस्वी भिक्षु। उसे देखकर उन्हें एक उम्मीद सी जगी, एक संभावना दिखी कि शायद दुख से परे जाने का कोई रास्ता है।
अश्वघोष इस अंदरूनी संघर्ष को पारिवारिक प्रेम और सभी प्राणियों के दुख से मुक्ति की चाह के बीच के द्वंद्व को बड़ी गहराई से दिखाते हैं।
और इसी द्वंद्व का नतीजा था महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग।
हाँ, वो रात, आधी रात को सोती हुई पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को आखिरी बार देखकर, वे महल, राज्य, परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े।
ये कोई भागना नहीं था, ये एक बहुत साहसिक कदम था अज्ञात की ओर।
बिल्कुल। इसके बाद 6 साल की कठिन खोज शुरू हुई, तपस्या का दौर। उन्होंने उस समय के जाने माने गुरुओं से सीखा, अलार कलाम, उद्दक रामपुत।
जी, उनसे योग और ध्यान की ऊंची अवस्थाएं सीखी। पर सिद्धार्थ को लगा कि ये स्थायी मुक्ति का मार्ग नहीं है, इससे परम सत्य नहीं मिल रहा।
तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, वो कठोर तपस्या वाला।
हाँ, फिर उन्होंने सोचा शायद शरीर को अत्यधिक कष्ट देने से ज्ञान मिलेगा, तो उन्होंने चरम तपस्या का रास्ता अपनाया। उपवास, सांस रोकना, शरीर को हर तरह से सताना।
अश्वघोष इसका बड़ा मार्मिक वर्णन करते हैं, बताते हैं कि उनका शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो गया था।
जी, लेकिन फिर सिद्धार्थ को ये एहसास हुआ कि ये रास्ता भी गलत है। शरीर को सिर्फ यातना देने से मन शांत नहीं होता, बल्कि और कमजोर हो जाता है, इससे ज्ञान नहीं मिल सकता।
और यही एक और महत्वपूर्ण मोड़ आता है ना?
बिल्कुल। जब वे तपस्या से इतने कमजोर हो गए थे कि लगभग मरने ही वाले थे, तभी सुजाता नाम की एक गांव की लड़की उन्हें खीर लेकर आती है
और वो उसे स्वीकार कर लेते हैं।
हाँ, ये चरम तपस्या का अंत था और कह सकते हैं कि मध्यम मार्ग की ओर पहला कदम भी।
लेकिन उनके जो 5 साथी तपस्वी थे वो तो नाराज हो गए।
हाँ, उन्हें लगा कि सिद्धार्थ अपने रास्ते से भटक गए हैं, विलासिता में लौट रहे हैं, तो वो उन्हें छोड़कर चले गए।
अब सिद्धार्थ अकेले रह गए।
अकेले? फिर वे गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए, जिसे आज हम बोधि वृक्ष कहते हैं, और वहां उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक मुझे परम ज्ञान, वो परम सत्य नहीं मिल जाता, मैं इस आसन से नहीं उठूंगा, चाहे शरीर यही नष्ट हो जाए।
और फिर उनका सामना होता है मार से।
जी, मार यानी मन के ही भ्रम, इच्छाएं, आसक्तियां और मृत्यु का भय। ये कोई भारी शैतान नहीं, बल्कि अपने ही अंदर की बाधाएं थीं।
अच्छा?
मार ने उन्हें रोकने की हर कोशिश की, सुंदर अप्सराओं का लालच दिया, राक्षसों की सेना भेजकर डराया, उनके अधिकार को चुनौती दी, सब कुछ।
पर सिद्धांत अविचल रहे, बिल्कुल शांत।
अंत में जब मार ने कहा कि तुम्हारे पुण्य कर्मों का साक्षी कौन है, तो उन्होंने अपनी उंगली से धरती को छुआ, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहते हैं। मानो कह रहे हो कि ये पृथ्वी मेरे कर्मों की साक्षी है, और कहते हैं कि पृथ्वी ने भी हामी भरी। मार पराजित हुआ।
ये एक गहरी आंतरिक विजय थी, अपने ही मन के विकारों पर जीत।
बिल्कुल। और फिर कहते हैं भोर का तारा उगने के साथ ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, जागृत हो गए। उन्हें परम सत्य का, दुख के कारण और उसके निवारण के मार्ग का ज्ञान हो गया।
बोधि प्राप्त हुई।
जी, बोधि।
इसके बाद की यात्रा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने क्या किया?
इसके बाद वे सबसे पहले सारनाथ गए। वहां मृगदाव में उन्होंने अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को खोजा जो उन्हें छोड़कर चले गए थे, और उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना।
और इसमें उन्होंने क्या सिखाया?
इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है, और निवारण का मार्ग है, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग।
यहीं से संघ की यानी भिक्षुओं के समुदाय की नींव पड़ी।
जी हाँ, वैसे अश्वघोष का मूल बुद्धचरित काव्य यहीं समाप्त हो जाता है, पर बुद्ध की कहानी और उनका काम तो यहाँ से असल में शुरू होता है।
बिल्कुल। अगले 45 सालों तक वे बिना रुके घूम घूम कर लोगों को सिखाते रहे। राजा हो या रंक, ज्ञानी हो या ज्ञानी, बिना किसी भेदभाव के।
और अंत में लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उन्होंने शांतिपूर्वक महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, एक परिपूर्ण जीवन का समापन।
एक अद्भुत यात्रा। तो अगर हम बुद्ध के दर्शन के सार को समझने की कोशिश करें, जैसा अश्वघोष दिखाते हैं, तो वो क्या है?
देखिए, अश्वघोष बुद्ध के दर्शन को किसी ईश्वर या रहस्य पर आधारित नहीं दिखाते, बल्कि मानवीय अनुभव और तर्क पर आधारित दिखाते हैं। इसके केंद्र में है दुख, जिसे पाली में दुख कहते हैं, उसकी सच्चाई को स्वीकार करना। ये निराशावाद नहीं है, बल्कि यथार्थवाद है। जीवन में असंतोष है, नश्वरता है, पीड़ा है। फिर उसका कारण समझना। कारण क्या है? वो है तृष्णा, यानी कभी खत्म न होने वाली चाहत, और अविद्या, यानी चीजों के असली स्वभाव को न समझ पाना, अज्ञान।
और फिर सबसे महत्वपूर्ण बात,
हाँ, सबसे आशावादी बात, कि इस दुख का निवारण संभव है। इसे निरोध कहते हैं, और उसका एक स्पष्ट व्यावहारिक रास्ता भी है, जिसे मार्ग कहते हैं।
यही 4 आर्य सत्य हैं?
जी, यही 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, और मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग।
और मध्यम मार्ग का क्या महत्व है? वो जो उन्होंने तपस्या छोड़ने के बाद पाया था।
हाँ, मध्यम मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये सिद्धार्थ के अपने अनुभवों से निकला निष्कर्ष था। उन्होंने राजमहल की चरम विलासिता भी भोगी थी और जंगल की कठोरतम तपस्या भी की थी।
दोनों रास्ते बेकार लगे उन्हें।
हाँ, दोनों को व्यर्थ पाकर उन्होंने महसूस किया कि सत्य या सही रास्ता इन दोनों अतियों के बीच में है। ये संतुलन का मार्ग है, ज्ञान का, सही आचरण यानी नैतिकता का, और मानसिक अनुशासन यानी ध्यान का, इन सब का संतुलन। न तो भोग विलास में डूब जाना है, न ही खुद को बेवजह कष्ट देना है।
ये आज भी कितना प्रासंगिक लगता है।
बिल्कुल।
अच्छा, ये बताइए कि उनकी इस पूरी असाधारण यात्रा के पीछे उनकी मूल प्रेरणा क्या थी? What drove him?
अश्वघोष के अनुसार, और जैसा कि पूरी बौद्ध परंपरा मानती है, उनकी मूल प्रेरणा थी असीम करुणा,
कंपैशन।
ये सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं है, ये सभी प्राणियों के दुख को इतनी गहराई से महसूस करना है कि उसे दूर करने की एक तीव्र सक्रिय इच्छा पैदा हो जाए।
अच्छा।
उनका अपना राजपाट छोड़ना, सालों तक ज्ञान की खोज करना, और फिर जीवन भर बिना थके लोगों को सिखाना, ये सब इसी गहरी करुणा से प्रेरित था। उन्होंने जो भी कठिनाइयां झेली, उनका सामना भी उन्होंने संभाव यानी मन की स्थिरता और करुणा से ही किया।
तो बुद्ध के जीवन में इतने सारे मोड़ आए, अगर हमें तीन सबसे अहम पड़ाव चुनने हो जिन्होंने उनकी दिशा ही बदल दी, तो वो कौन से होंगे?
ये चुनना मुश्किल है, पर हाँ, तीन बहुत निर्णायक मोड़ थे। पहला तो निश्चित रूप से वो चार दृश्य ही थे।
हाँ, वो तो थे ही।
वो क्षण जब पहली बार उन्होंने जीवन की कठोर सच्चाइयों, बुढ़ापा, बीमारी, मौत को अपनी आंखों से देखा, इसने उनके जो सुरक्षित भ्रम का बुलबुला था उसे फोड़ दिया। ये उन्हें आरामदायक अज्ञान की नींद से जगाकर सत्य की खोज के रास्ते पर ले आया। वो राजकुमार से एक साधक, एक खोजी बन गए। ये पहला बड़ा कदम था।
सही कहा। और दूसरा?
मेरे ख्याल से वो रात जब उन्होंने घर छोड़ा।
बिल्कुल। दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। ये सिर्फ महल छोड़ना नहीं था, सोचिए, ये अपनी पूरी पहचान, राजकुमार, पति, पिता, भावी राजा, अपना पूरा अतीत, अपना सुरक्षित भविष्य, सब कुछ छोड़ देना था।
हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था।
ये दिखाता है कि सच्ची खोज के लिए, परम सत्य के लिए कितना बड़ा दांव लगाना पड़ सकता है।
हाँ।
सांसारिक सुरक्षा और मोह को छोड़कर आध्यात्मिक सत्य को चुनना। अश्वघोष इसके भावनात्मक बोझ को, उस द्वंद्व को बहुत मार्मिक ढंग से दिखाते हैं।
और तीसरा मोड़, क्या वो तपस्या छोड़ने वाला क्षण था?
हाँ, मेरे विचार में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है चरम तपस्या का त्याग, और सुजाता से वो खीर स्वीकार करना। ये अक्सर कम करके आंका जाता है, पर ये बेहद निर्णायक था। सोचिए, 6 साल की कठोर मेहनत के बाद ये स्वीकार करना कि मैं गलत रास्ते पर था, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए।
सही बात है।
ये एक तरह की विफलता थी, पर इसी विफलता ने सही रास्ते यानी मध्यम मार्ग का दरवाजा खोला। ये समझना कि शरीर को नष्ट करके मन को नहीं जीता जा सकता, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य था। इसने दिखाया कि कभी कभी पीछे हटना या रास्ता बदलना ही आगे बढ़ने का सही तरीका होता है।
ये तीनों ही वाकई जीवन बदलने वाले मोड़ थे। अच्छा, बुद्ध की ये कहानी हजारों साल पुरानी है, आज के समय में, आज के इंसान के लिए इसमें क्या सीखे, हम क्या ले सकते हैं इससे?
मुझे लगता है बहुत कुछ। सबसे पहली बात तो शायद ये है, कठिन सच्चाइयों का सामना करने का साहस रखना। जैसे सिद्धार्थ ने महल के आरामदायक झूठ को छोड़कर बाहर की दुनिया के दुख की सच्चाई को देखा, वैसे ही हमें भी जीवन की मुश्किलों, अपनी कमियों या दुनिया की समस्याओं से मुंह मोड़ने के बजाय उन्हें समझने और स्वीकार करने की हिम्मत रखनी चाहिए।
ये आसान नहीं होता।
बिल्कुल नहीं। दूसरी सीख है कि असली बदलाव, असली जीत अंदर से आती है। जैसे बुद्ध की मार पर विजय कोई भारी लड़ाई नहीं थी, वो अपने ही मन के लालच, भय और भ्रम पर विजय थी। बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने मन को कैसे साधते हैं।
और मध्यम मार्ग का संतुलन, वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी जरूरी लगता है। हम सब कहीं ना कहीं अतियों में चले जाते हैं।
निश्चित रूप से अतिवाद से बचना, चाहे वो काम का अतिवाद हो या आराम का, भोग का हो या त्याग का, हर चीज में संतुलन खोजना जरूरी है। ये बुद्ध के जीवन का एक बहुत बड़ा संदेश है।
और करुणा?
हाँ, और सबसे बढ़कर करुणा की शक्ति, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना और फिर उनकी मदद करने की इच्छा रखना। बुद्ध की कहानी दिखाती है कि यही सबसे बड़ी प्रेरणा शक्ति बन सकती है।
सच्ची सुरक्षा या खुशी बाहरी चीजों को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि समझ, स्वीकृति और करुणा में है।
ये सारी बातें आज के संदर्भ में, आज की दुनिया में कैसे प्रासंगिक हैं, जहाँ इतना तनाव है, भटकाव है, अनिश्चितता है। मुझे लगता है आज के समय में शायद ये पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। आज की दुनिया में जहाँ बाहरी शोर और भटकाव बहुत ज्यादा हैं, चिंताएं बहुत हैं, ऐसे में बुद्ध का आत्म जागरूकता, माइंडफुलनेस, दिमागी शांति, इनर पीस, भावनात्मक संतुलन, इमोशनल बैलेंस और करुणा, कंपैशन का संदेश एक तरह का मरहम हो सकता है। ये हमें सिखाता है कि बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किल हों, हम अपने अंदर शांति, स्पष्टता और जीवन का एक गहरा अर्थ खोज सकते हैं। ये दुनिया से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दुनिया में रहते हुए ही बेहतर ढंग से जीना सिखाता है।
बिल्कुल सही कहा। तो इस पूरी गहरी बातचीत से अगर हमें तीन खास बातें निकालनी हों जो हमारे सुनने वालों के मन में रह जाएं, तो वो क्या होंगी?
तीन मुख्य बातें। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि कह सकते हैं। महाभिनिष्क्रमण यानी बुद्ध का घर छोड़ना हमें याद दिलाता है कि जीवन में कभी कभी गहरे उद्देश्य या अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए हमें अपनी सबसे प्रिय चीजों या आरामदायक स्थितियों को छोड़ने का मुश्किल, भावनात्मक रूप से भारी चुनाव करना पड़ सकता है। ये व्यक्तिगत प्रेम और लगाव से ऊपर उठकर सभी के कल्याण के लिए किए गए त्याग की मार्मिकता को दिखाता है। ये हमें अपने जीवन के चुनावों और प्राथमिकताओं पर सोचने को मजबूर करता है।
ये गहरा है। और दूसरी बात?
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, मध्यम मार्ग। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये जीवन की जटिलताओं को साधने का एक बहुत ही व्यावहारिक, इंटेलेक्चुअल टूल है। ये अतिवाद से बचने की कला है, चाहे वो विचारों का अतिवाद हो, जीवन शैली का या किसी भी चीज का। ये संतुलन, विवेक और समझदारी से निर्णय लेने का महत्व सिखाता है। आज की जो इतनी पोलराइज दुनिया है, उसमें ये खासकर बहुत जरूरी है।
सही है। और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख।
तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि ये है कि दुख और संघर्ष जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे व्यर्थ नहीं जाते, अगर हम उनसे सीखकर समझ और करुणा विकसित कर सकें। बुद्ध की यात्रा दिखाती है कि हमारी अपनी कठिनाइयां, हमारे अपने संघर्ष हमें दूसरों के दुख को बेहतर ढंग से समझने और उनकी मदद करने की क्षमता दे सकते हैं। यानी व्यक्तिगत पीड़ा भी सार्वभौमिक कल्याण का एक स्रोत बन सकती है, अगर हम उसे सही दिशा दें। अपने दुख को समझकर हम दूसरों के दुख को कम करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं।
ये तीनों बातें वाकई बहुत विचारणीय हैं। अपने संघर्षों से सीखना, संतुलन बनाना और गहरे उद्देश्य के लिए त्याग करना। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।